फिर इसी तरह से आप देखिए एक और दुआ भी है बेकरारी को दूर करने की, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईन वस्लहली शअनी कुल्लहू ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, मैं तेरी ही रहमत की उम्मीद रखती हूँ या रखता हूँ, बस तो आंख झपकने के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स के सपुर्द न कर और मेरे लिए मेरे सब काम संवार दे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अबू दाऊद के अल्फाज हैं 5090। और जब ये जुमला पढ़ते हैं ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो सारे कार्ड जो कभी लोग एक दूसरे को देते थे ओनली फॉर यू, ये याद आ जाते हैं मुझे। रहमतों की उम्मीद तुझसे, पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना। ये तो नहीं आप कह रहे दुश्मन के या शैतान के हवाले, आपके अपने नफ्स के हवाले, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन ही वो है। और मेरे लिए मेरे सब काम संवार दे, और तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं, इसके बाद क्या रह गया। तो इस शऊर के साथ इसको भी मांगिए।
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا
आप देखिए किस दुआ पे आप जितना गौर करेंगे ना, आपको उतना ही एक तो अल्लाह की रहमत की वसअत का यकीन आएगा, क्योंकि जब अल्लाह की रहमत किसी को छुपाती है ना, तो उसके सब गुनाह ख़त्म, सब छुप जाता है। यानी 100 किस्म के गुनाहों के बावजूद बंदा बड़ा साफ़ सुथरा लगता है। नामे अमाल के ऊपर जब अल्लाह अपनी रहमत की चादर डालता है, तो बंदे के सब गुनाह नेकियों में भी बदल जाते हैं। और फिर दूसरा जो खौफ आता है, इसमें अपने नफ्स से आता है। अलग से दुआएं भी हैं, हम सीख चुके हैं, फिर भी सीखेंगे दोबारा इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा, कि हम कैसे बेहतरीन तरीके से अपने नफ्स के शर से अपने आप को बचा सकते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इस तरीके से हमारे सामने आएंगी चीज़ें, कि एक एक करके हमें अपनी कमियां दिखती जाएंगी। कभी कभी इंसान अपना दुश्मन खुद ही बना होता है। फिर आप देखिए ये जो बातें, बस लिख ली शानी कुल्लहू, सारे ही काम संवार दे, पीछे क्या रह गया, सारे। हम बस अलिफ बे से ते से 1 2 3 4 5 ए बी सी डी कह दीजिए सारे, क्योंकि है ही कोई नहीं। देखिए इसको कहते हैं टोटल सरेंडर, बस सब कुछ अल्लाह के हाथ में, अपने आप को केयर फ्री रखा करें, हर वक्त अपने गम पालते रहते हैं हम, कर क्या लेंगे अब? आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए अब मैं ये ले लूँ, कितना को कर लेंगे, है ही नहीं हिम्मत। और गम तफक्कुरात वैसे जीना दोभर कर देते हैं। एक दफ़ा एक लंबा सा सांस खींचिए और बोलिए, मुझे क्या फिर नहीं मिलता तो ना मिले मैं क्या करूं, नहीं आता कोई तो ना आए मैं क्या करूं, नहीं को बुलाता तो ना बुलाए मैं क्या करूं। आप देखेंगे ये बात कहने में और सुनने में ही आपके अंदर एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आएगी, और कहां पे रब के साथ इतनी बड़ी हस्ती। फिर जरा तीसरी दुआ है इसी मौजू की, पहले बताती हूँ फिर इसकी थोड़ी सी खूबियाँ भी अलग से देखते हैं। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। बस ख़त्म हो गई दुआ जी, ख़त्म हो गई। अबू दाऊद की रिवायत है 1525, कितनी लाइन है, आधी लाइन होगी, और एक ही लफ्ज़ की तकरार है। आपको भी बैठे हुए सबसे जल्दी जो दुआ याद होगी वो यही होगी, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, ये तो आता ही है ना, ला उशरिकु बिही शैयन। और इसकी तासीर कितनी है, इसके बारे में भी हमारे उस्तादों में से किसी ने कहा था कि किसी भी बंदे के सामने पेश होना हो, घबराहट है, कोई इंटरव्यू है, कोई इम्तिहान है, पुलिस वाला रोक लेता है, गाड़ी के पेपर दिखाओ, कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप ये दुआ मांगिए, अल्लाह आपको मखलूक से बेनियाज कर देगा। क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ छोटे छोटे दुआओं किस्से ले रहे हैं ना, जब पूरी पूरी हदीस आप पढ़ते हैं ना इन्हीं मौजूआत पे, तो उसमें और भी बड़े हीरे मोती होते हैं। हदीस में से किताबु दुआ पढ़ते हैं ना, तो उसमें साथ पूरी दुआएं भी आती हैं और हदीस भी आती है। तो ये हर घबराहट के मौके पे आपको लोगों से बात करनी है और मुश्किल हो रही है, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, कितना प्यार, कितना इन लफ्ज़ों में। आप देखिए बंदे को तो रब पे आता है, मैं तो सोचती हूँ रब को कितना प्यार आता होगा, कि वही बात है कि अल्लाह तेरे तो बड़े हैं, हमारा कोई नहीं है, मेरा तो है ही कोई नहीं, देखो ये बच्चा भी नहीं मेरी सुनता, शौहर को भी मेरी बात नहीं समझ आती, ये बहन भाइयों को तो बिल्कुल ही नहीं आती, ला उशरी को भी चाहिए, ये कौन से शिर्क की बात है, इधर ज़रा देख रहे हो आप, ये कहना कि फ़लाँ मेरे गम दूर कर देगा और फ़लाँ मेरी मुश्किलात टाल देगा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ऐसी बातें कह के हम अमूमन कभी कभी शिर्क की हद तक पहुँच जाते हैं। तो इस शऊर से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे इस पे मुतमईन कर दे, मांगिएगा मिलके हर लफ्ज़ के साथ अपने आप को रखिएगा।
अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही
आप इसमें अपनाइत को और मोहब्बत को भी महसूस करें ना, मुझे ऐसे लगता है एक बच्चा है और आप माँ के पैरों में लिपट रहे हैं ना, माँ मसरूफ़ है या उसकी बात नहीं सुनना चाहती, जो वो कह रहा है वो उसको देना नहीं चाह रही, तो जैसे बच्चे लिपट कर और मोहब्बत के साथ अपनी माँ से बात मनवाते हैं ना, माँ तो मजबूर हो जाती है, अल्लाह को तो कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अंदाज इतना ही प्यारा है। और आप अभी उठते बैठते अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अच्छा हम होते तो कहते इसके बाद अब कुछ मांगे भी, वो मांग लिया सब कुछ अल्लाह के हवाले करके, ठीक है। तो ये खूबसूरत सी दुआएं थी जिसमें हमें अपने कामों की मुश्किलात को दूर करना है, बेकरारी, और जो अपनी तबीयत में बेकरारी पाए, इस्तराब पाए, ये पढ़े, एंग्जाइटी क्या है, बेकरारी, अंक्स, स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, बेकरारी, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये क्या बेकरारी, शुगर का ऊपर नीचर होने क्या है बेकरारी। जाहिर है कि एक हल्की सुई चुभ जाए तो बंदा बेकरार नहीं हो जाता, तो फिर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। हाय ये ना हो जाए, हाय कोरोना, हाय पॉजिटिव आ गया, हाय टेस्ट करवाना है, हाय क्वारंटाइन, हाय ये नाम कभी सुने नहीं थे आज से कुछ माह पहले, अब बच्चे बच्चे के मुंह पे। तो बेकरारियों को दूर करने के लिए वहां के बंदों के दर क्यों खटखटाते हैं, बंदों से शिकवे और गिले क्यों करते हैं। बंदे बेचारे पूरी कोशिश भी करेंगे ना तो कुछ नहीं कर सकते। कभी अपने बच्चों को देखा करे, वो कहते हैं मैं खाना खुद खाऊंगा। कैसे खाता है, चम्मच में 2 दाने और नीचे 5 दाने। तो बच्चे तो फिर ऐसे ही करते हैं ना, आधा फैलाते हैं आधा सही करते हैं। तो हमारे भी काम अपने ऐसे ही होते हैं। अपने आप को हमेशा अल्लाह के हवाले करिए, ठंडे रहिए, रिलैक्स हो, किसी चीज़ को जीने मरने का मौका ना बनाएं। ये जो हमारी हाइपरनेस है ना, ये उसका भी इलाज है। अपने बच्चों को बैठ के ये दुआ याद कराया करें। वो मासूम से बच्चे अभी ये मांगना शुरू हो जाए, उनको नहीं भी पता ना कि ये गम क्या है तकलीफ क्या है, तो तबीयतों का जो वो उछाल होता है ना, जो नशूज होता है कभी कभी, ये सब अल्लाह की रहमत से कंट्रोल में आता है। तो कंट्रोल में रखने की खुद को और दूसरों को ये दुआएं हैं। अल्लाह ताला बस हमें किसी के बस में ना डाले। अब अगली दुआएं जो हकीकत में तो दुआएं तो कर्ज की हैं और उससे निजात की हैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि शायद अक्सरियत को आज के दौर में इन दुआओं को समझने और मांगने की ज़रूरत है। हम एक पूरी बुक पढ़ चुके हैं और मैंने देखा था खालिबन हमारे ऐप पे भी है कर्ज के मसाइल और कर्ज से मुतल्लिक भी ABCD है, लेकिन यहाँ कुछ दुआएं हैं ख़ास तौर पे जो भी किसी भी कर्ज में मुबतला है उससे निजात की कोशिशें भी और दुआएं भी। तो पहली दुआ क्या है, अल्लाहुम्मक्फिनी बिहलालिका व अन हरामिका व अग्निनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह तुम मुझे अपने हलाल के साथ अपनी हराम करदा चीज़ों से काफ़ी हो जा, और मुझे अपने फजल से अपने माँ सिवा से बेनियाज कर दे। ये मसनून दुआ है कर्ज अदा करने की। अल्लाह के नबी के पास कोई आया और जब उसने कर्ज़ की बात की तो आपने उसे कहा कि ये दुआ मांगा करो। और ये दुआएं जो होती हैं ना, ये दिल का बोझ भी कम करती हैं और कर्ज़ों का बोझ भी कम करती हैं। दुआ है ये तिरमिज़ी में रिवायत 3563 की। अब अगर आप इसके लफ्ज़ों पे देखें ना तो अल्लाहुम्मक्फिनी किफ़ायत से है, कफ़ा यकफी उर्दू में भी हम बोलते हैं। फिर इसी तरह भी हलालिका न हरामिका, यानी मेरी ज़रूरतें ऐसी ना बढ़ जाएं कि मैं हलाल की जगह हराम लेने लग जाऊं। वाखनीनी भी फ़दली का, और तू मुझे गनी कर दे। गनी वही होता है जो बेनियाज, की ज़रूरत ही ना रहे मुझे, मेरी ज़रूरतें थोड़ी कर दे। भी फ़दली का अपने फ़जल से, अमन सिवाक अपने सिवा सबसे बेनियाज कर दे। कभी कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी आए सबसे पहले किसका ख्याल आता है, वाकई अल्लाह का आता है, और उसके बाद फिर किसी और का आ सकता है। हमें तो अक्सर पहले इंसानों के आते हैं ख्यालात, फिर आखिर में कहते हैं अच्छा फिर मेरा तो फिर अल्लाह ही है, कुछ कर ही देगा। नहीं, पूरी यकीन से मांगिए और इन दुआओं की रूह में उतर कर मांगिए। जी मिलकर मांगते हैं इसको।
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك وأغنني بفضلك عن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك وأغنني بفضلك عن من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك اللهم حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
آمین. اور آپ ان دعاؤں کی انشاءاللہ تاثیر بھی دیکھیں گے کہ مزید قرضے میں پڑھنے سے بھی دل بے نیاز ہو جائے گا. ہمارا حال اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلا قرضہ اترتا نہیں تو ہم اور قرضے لینے لگتے ہیں. پہلے دور کے قرضے ضرورتوں کے تھے, آج کے ضرورت کے بھی ہوں گے کچھ, لیکن زیادہ تعیشات کے. چھوٹی چیز سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے, لیکن بڑی چیز, کم قیمت چیز سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. ہم زیادہ قیمت کی چیز لیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب ہم نیڈ سے اوپر اٹھ کے وانٹس پہ جیتے ہیں تو قرض آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کو پسند نہیں کرتے تھے. کسی پہ قرض ہوتا تو آپ خود اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے, کسی اور کو کہتے پڑھ لو. اور آپ نے فرمایا کہ میت قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے. تو ہر ایک اپنے حالات کو خوب جانتا ہے, لیکن ذرا سے اس شدت پہ غور کریں گے تو کم از کم پھر آپ ان چیزوں کو جن کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے قرض میں نہیں پڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور بعض دفعہ خود تو قرض سے نکلے, پھر بچوں کو قرضوں میں ڈال دیا. تو یہ ایک بڑا ہی رقت امیز ٹاپک ہے جو پوری امت مسلمہ کو اس وقت پلیگ کی طرح لگ چکا ہے. کلچر جو غیر مسلموں کا تھا اپنا ہم مسلمانوں نے لیا. اللہ ہی ہمارے دلوں کو بدل دے. اگلی دعا بھی قرض سے ہی متعلق ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبت الرجال. اے اللہ, یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں پریشانی اور غم سے, عاجز ہو جانے اور کاہلی سے, بزدلی اور بخل سے, اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے. دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے نا. ہم تو دیکھ لیا, حزن بھی دیکھ لیا, عجز بھی دیکھ لیا, کسل بھی دیکھ لیا, جبن اور بخل بھی دیکھ لیا. دلع دین پہ وہاں بات نہیں ہوئی تھی, دعا وہی ہے. یہاں اس کو غور سے دیکھ لیجئے. اور پھر غلبت الرجال, اب دیکھیے جہاں قرض ہوتا ہے نا وہاں لوگوں کا غلبہ آپ پہ ضرور ہوگا. ظاہر ہے کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ آپ کے اوپر غالب آئے گا, تقاضا کرے گا. جس کا کچھ دینا ہوتا ہے پھر وہ لینے کی پوری ممکن کوشش کرتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ جب قرضوں میں جکڑے ہوتے ہیں نا تو اکثر لوگ ویسے ہی آپ پہ چڑھائی کرتے ہیں, یعنی آپ کی عزت بھی نہیں رہتی. تو بالکل اسی طرح سے قرض سے اپنے آپ کو بچائیے. آپ دعا تو پہلے سیکھ چکے ہیں, لیکن اس دعا کے ساتھ بھی اس کو 3 دفعہ مانگیے.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبت الرجال اللهم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبت الرجال.
آمین. بس ان کو مانگتے رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ رحمت کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو, اور جو بھی کام ہم کریں اس میں اخلاص کے ساتھ عاجزی بھی ہو اور دوسروں کے لیے بہترین معاملہ بھی ہو. اور اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو ہر معاملے میں اس طریقے سے یاد رکھیں جیسے ہم عام لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. ہوتا یہ کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگاتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں سے بے نیاز بھی کرتا ہے. اور جو اللہ سے ہٹ جائے یا دوسروں کی طرف نظریں لگائیں تو اس کو خیال بھی کم ہی آتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم میرے پر کچھ باتیں رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ علی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.